ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
तो आज हम लोग पढ़ेंगे भागवत महापुराण से। मैं कर लूंगा। और आज का जो टॉपिक है भगवान का आविर्भाव। कोई प्रश्न कर सकता है भगवान का जन्म, कृष्ण जन्म क्यों नहीं? तो कृष्ण जन्म जो है वह जन्माष्टमी के दिन होगा। आज आविर्भाव। कल आप लोगों ने बलराम आविर्भाव तिथि के अवसर पर बलराम जी कथा सुना। आज भगवान कृष्ण का जन्म और आविर्भाव कृष्ण का हुआ है। जयंती जो शब्द है, जन्म जो शब्द है, केवल कृष्ण के लिए सार्थक है, अन्य किसी के लिए नहीं। हम लोग लगा देते हैं गीता जयंती, बलराम जयंती, लेकिन सब गलत है। जयंती शब्द जो है, जन्म शब्द जो है, वो नक्षत्र आदि का गणना कर करके दिया जाता है और वह केवल कृष्ण के लिए उपयुक्त है, त्रिपाठी गोस्वामी के अनुसार। तो आज आविर्भाव यानी इस धराधाम पर भगवान आए हैं, उसका आज कथा है। तो भागवत महापुराण के दशम स्कंद के दूसरे अध्याय से एक श्लोक लिखा हुआ है बोर्ड पर और उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो श्लोक लिखा हुआ है 7:10-7। गच्छा, मैं कहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हो गया ना, हो गया। गच्छा देवी ब्रजम भद्रे गोपा गोभी अलंकृतम रोहिणी वसुदेवस्य भार्या ते नंद गोकुले अन्याश्च कंस संविघ्ना विवरेषु वसन्ति। गच्छं देवी व्रजं भद्रे गोप गोभिर अलंकृतं रोहिणी वसुदेवस्य भार्या ते नंद गोकुले भार्यास्ते नंद गोकुले अन्याश्च कंस संविघ्ना विवरेषु वसन्ति। पढ़िए पढ़िए जल्दी, समय कम है। वासुदेव है कि वसुदेवस्य? माता जी एनी बड़ी गच्छा जाइए देवी, हे देवी, ब्रजम ब्रज में, भद्रे आप कल्याणमयी हो या आपका कल्याण हो, गोप गोभीर जहां पर गाँव बछड़े ग्वाल बाल और ग्वालिन विराजमान हैं, अलंकृतम सुशोभित है, रोहिणी रोहिणी वसुदेवस्य वसुदेव जी की भार्या एक पत्नी आस्ते निवास कर रही है, नंद गोकुल नंद बाबा के गोकुल में, अन्याश क्या जाए अन्य पत्नियां, कंस संविघ्ना कंस के भय से, विवरेशु एकांत स्थान में, गुहा में या कंदरा में बसंती निवास कर रही हैं, या उसके बल गुप्त रूप से निवास कर रही हैं, ही निश्चय ही। तो मेरे पास अंग्रेजी किताब है तो अंग्रेजी में ट्रांसलेशन पढ़ता हूं, उसके बाद में कथा शुरू करेंगे। द लॉर्ड ऑर्डर जोग माया, ओ माई पोटेंसी हु आर वर्शिपेबल फॉर द इंटायर वर्ल्ड एंड हुज नेचर इज टू बेस्टो गुड फॉर्चून अपॉन ऑल लिविंग एंटिटीज, गो टू ब्रज वेयर देयर लाइफ मे देयर लिव मेनी काउहर्ड मेन एंड देयर वाइव्स इन दैट वेरी ब्यूटिफुल लैंड वेयर मेनी काउज रिसाइड, रोहिणी द वाइफ ऑफ वसुदेव इज लिविंग at the home of Nanda Maharaj. Other wives of Vasudev are also living in incognito because of fear of Kansa. Please go there. Purport. Nanda Gokula, the residence of King Nanda, was itself very beautiful. And when Jogmaya was ordered to go there and encourage the devotee with fearlessness, it becomes even more beautiful and safe because Jogmaya had the eligibility to create such an atmosphere. The Lord ordered her to go to Nanda Gokul. Om Ajnanati Virandasya Jnananjana Salakaya Chakshur Jinmilitam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदी गौरभक्तबिंद हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो माता पृथ्वी के प्रार्थना से माता पृथ्वी असुरों के अत्याचार से बड़ी दुखी थी। जिस प्रकार से कोई पुत्री होती है उसका विवाह हो जाता है, यदि वो किसी प्रकार से त्रस्त हो, चाहे उसका पति उसे त्रस्त करे, चाहे उसके बच्चे उसे त्रस्त करें, समाज से त्रस्त करे तो वह स्त्री अपने बाप के घर जाती है। बाप मां का संबंध ऐसा है, स्पेशली बेटियों के लिए स्पेशल संबंध है। बेटियों पर कितना भी दुख आ जाए, बाप मां बेटों को दुख को प्रयास करते हैं कि ठीक है संभल जाओ कर लो, लेकिन बेटियों को दुख को अपना दुख मानते हैं। कोई विपदा आ जाए तो बेटियां बाप मां के घर जाती है। तो पृथ्वी अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गई है और ब्रह्मा जी से रो रो करके रोंदन कर करके कह रही है। यहां वर्णन किया गया कि पृथ्वी गौ का रूप धारण कर कर गई है। कोई कह सकता है पृथ्वी बैल का रूप धारण करके क्यों नहीं गई? क्योंकि बैल तो धर्म के प्रतिनिधि हैं, तो पृथ्वी गौ का रूप धारण कर करके गई। आचार्यगण कहते हैं कि भगवान यज्ञ पुरुष हैं, भगवान यज्ञ से प्रसन्न होते हैं। देवता लोगों का भोजन पानी चलता है यज्ञ के द्वारा। शर्मा जी आप जप मत कीजिए, जप मैं कितने बार कह चुका हूं, जप करने का मतलब होता है सुनना और कथा सुनने का मतलब होता है सुनना। एक साथ में दो कार्य करना ठीक नहीं है। आप लोग आगे आ जाओ, लाल कपड़ा सब उजला ही दिखाई पड़ा, कोई तो लाल रहो, जब शरीर में खून नहीं रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। लाल रहना मतलब खून है, सब उजला दिखाई पड़ते हैं क्यों? हाँ जी, क्या बात हो रही थी? हाँ, तो यज्ञ के लिए जो पंचामृत है वह सब मोस्टली गौ से प्राप्त होता है। पांच, गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, गाय का गोबर और गोमूत्र, ये सब गाय से प्राप्त होते हैं। और ऐसे भी गाय के देह में 33 कोटि देव निवास करते हैं। तो एक तरह से पृथ्वी समस्त देवताओं, मनुष्यों और सबका प्रतिनिधित्व करते हुए गो का रूप धारण की, और गो का रूप धारण कर करके वो ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी से अक्रांता भूमि भारेण ब्राह्मण शरणम जऊ, ब्रह्मा जी के शरण में गई। तो ब्रह्मा पृथ्वी के अश्रुपाप स्वभाव स्वरूप को देख के, उसके करुणा को, क्रंदन को वो संतावना दिए और तुरंत वे समस्त देवताओं के साथ में क्षीर सागर पहुंचे। यहां पर कहा गया है सर्व देवई सहदेवई, समस्त देवताओं के साथ में, लेकिन भगवान शिव के लिए अलग कहा गया है। जगाम सत्रिनयनम तीरम क्षीर क्षीर पयो निधे, साथ में भगवान शिव को भी लिए जिनका नाम है त्रिनयन, तीन आंख वाले। यह जो तीनों का कल्याण करते हैं, तीनों पर जो दृष्टि रखते हैं वो भी त्रिनयन हुए। मनुष्यों पर भी दृष्टि रखते हैं, देवताओं पर भी दृष्टि रखते हैं और असुरों पर भी दृष्टि रखते हैं, इसलिए उनका नाम है त्रिनयन। तो ब्रह्मा जी जानते थे कि यदि देवताओं को लेकर के मैं जाऊंगा भगवान के पास और कुछ भगवान सॉल्यूशन देंगे, यदि भगवान शिव को साथ नहीं ले जाएंगे तो ये अशुतोष हैं और ये बात तो किसी से छिपेगी नहीं, असुरों को पता चल जाएगा भगवान शिव के पास चले जाएंगे और भगवान शिव बड़े जल्दी खुश हो जाते हैं और जल्दी खुश होकर कुछ उल्टा पुल्टा न कर दें। तो इसीलिए ब्रह्मा जी सोचे कि भगवान शिव को भी साथ लेकर चलना अच्छा होगा। तो ये भगवान शिव को साथ लेकर गए हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, त्रिनयन को लेकर के साथ में जा रहे हैं। और कहां गए, तीरम क्षीर पयोनिधि, पयोनिधि यानी क्षीर सागर के तट पर गए। तत्र गत्वा जगन्नाथम देव देव वृषाकपिम पुरुषम पुरुष सुक्तेन उपतस्ते समाहिता, वहां पर स्थित होकर के समस्त देवताओं के साथ में समस्त देवता लोग पुरुष सुक्त के द्वारा भगवान का प्रार्थना किए। कई किस भगवान का, जगन्नाथ जो जगत के नाथ हैं, देव देवम जो देवताओं के भी आराध्य देव हैं, वृषाकपिम जो सब पर हमेशा कृपा दृष्टि रखने वाले हैं, उन भगवान का वे लोग आराधना किए। उसके बाद भगवान प्रसन्न हो गए, प्रसन्न होकर के भगवान कुछ बात कहे हैं। गिरम समाधौ गगने समृतम सम्य वेधा वेधास्तुतानुवाच, यहां पर ब्रह्मा जी को वेधास्त्री कहा गया है। वेधास्त्री मतलब जो भगवान के बात को जान जाते हैं, भगवान के कहे गए बात को जो समझ जाते हैं। देखिए क्षीर सागर पर जाकर के प्रार्थना किए हैं सब लोग, कैसे कहते हैं समाधौ, समाधि में स्थित होकर के ब्रह्मा जी समाधि में स्थित हुए, यानी भगवान का साक्षात्कार हो गया। और भगवान जो बात कहे सब लोगों ने नहीं सुना, क्षीर सागर पर सब थे लेकिन सबने बातें नहीं सुना। किसने सुना, ब्रह्मा जी ने सुना। इसलिए सुखदेव स्वामी कहते हैं वेधास्त्रव उदसानुवाच, वेधास्त्रव ब्रह्मा जी को वेधास्त्रव कहा गया है, वेद का बात जो जानते हैं, भगवान के कहे गए बात को जो जानते हैं। तब वे ब्रह्मा जी बतलाए कि क्षीरोदक साहेब विष्णु ने क्या कहा है, भगवान ने क्या कहा है, बात बताए कि तुम लोग जन्म लो, जो स्त्रियां हैं देव स्त्रियां हैं सुर स्त्रियां वो भी जन्म ले, देवता लोग भी जन्म ले, इस प्रकार से तुम लोग ब्रज में गोकुल में और मथुरा में जन्म लो। जितनी गोपियां थी वो तीन प्रकार की गोपियां थी। एक गोपियां वे थी जो भगवान के नित्य सहचरी थी, श्रीमती राधिका ललिता विशाखा आदि, जो कि गोलोक धाम से आई थी। एक गोपियां दंडकारण के ऋषि लोग थे और एक गोपियां जो थी वो देवलोक की स्त्रियां थी, सुरस्त्रिया। अब आए, पूरा कथा आप लोगों ने सुन लिया किस प्रकार से देवकी का कर्ण से विवाह हुआ और बाद में आकाशवाणी हुआ तो मारने जा रहा था लेकिन वसुदेव जी अपने बुद्धि विवेक से उसे मना कर दिए, बचा लिए देवकी को। और इस प्रकार से क्रमशः देवकी को 9 संतान हुए, 8 पुत्र और 1 कन्या उत्पन्न हुई। अथ काल उपावृते देवकी सर्ववेद देवता पुत्रान प्रसूषते चाष्टौ कन्या च एवान वत्सरम, 1 साल के बाद एक टाइम गैप नहीं हुआ, प्रत्येक साल देवकी को 1 संतान, 1 साल पर संतान हुए। च अष्टौ कन्या, 8 पुत्र हुए और 1 कन्या हुई। जो कन्या जो है आचार्यगण कहते हैं वो सुभद्रा जी हुई, और वो हुई थी जब कंस का अवसान हो गया था, कंस मारा गया था उसके बाद सुभद्रा जी का जन्म हुआ। इस प्रकार से वसुदेव जी के 6 पुत्र उत्पन्न हो गए थे। प्रथम पुत्र 5 पुत्र उत्पन्न हो गए थे और 6 गर्भ में था। तब वसुदेव जी प्रथम पुत्र को लेकर के गए कंस को देने के लिए। 2 पुत्रों का नामकरण हो गया था, तो क्षत्रियों के बच्चों का नामकरण होता है 3 से 5 साल के बीच में, ना कि आजकल बच्चे जन्म ले तुरंत नाम लिखा जाता है क्या नाम हुआ। क्षत्रियों का ऐसे नहीं, हम लोग भी छोटे बच्चे जन्म जब लिए थे तो नाम न किसी का कुछ भी नाम जीने के लिए नाम दे देते थे, लेकिन नामकरण बाद में विधि था। तो वैश्य लोगों का जल्दी हो जाता है, क्षत्रियों का 3 से 5 साल के बीच में। तो वसुदेव जी के 2 पुत्र, एक का नाम था कृतिमंत और एक का नाम था सुशेषण सुसेण। तो कृतिमंत जो पहला बेटा था ये 5 साल का हो गया था, यानी 5 साल तक वसुदेव जी और देवकी जी अपने पुत्र का लालन किए, लालन का सुख मिला, पालन का सुख नहीं मिला। तो लेकर के गए और कंस जब देखा कि वसुदेव जी कितने सत्यनिष्ठ हैं, दृष्टवा समत्वम तत्सौरे सत्य चैव व्यवस्थितम कंस तुष्ट मनाराजन प्रसन्न इदम ब्रवीत। दृष्टवा समत्वम तत्सौरे सुरसेन नरेश, वसुदेव जी को जब कंस देखा कि कितने ये सत्यनिष्ठ हैं, उन्होंने कहा था कि हे कंस तुम्हें तो देवकी से कोई भय नहीं है, तुम्हें तो भय इसके पुत्र से है, वो भी 8वें पुत्र से। तो कहा 8 पुत्र क्या, तुम्हें मैं सब संतान ला करके दे दूंगा। कहते हैं वसुदेव जी, नहीं अस्ते भयम सौम्य, शांत दिमाग से समझो कंस, हे सौम्य हे गुणवान कंस, जो आकाशवाणी हुई थी, आकाशवाणी ने कहा था कि देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा काल होगा, इसका मतलब कि देवकी आपके काल नहीं है। तो आपको भय देवकी, लेट्स बी क्लियर, आपको भय देवकी से नहीं है, आपको भय देवकी के 8वें संतान से है। क्लियर हो गया? तब वसुदेव जी कहते हैं 8वें संतान का बात करना, पुत्रान जितने बच्चे होंगे समर्पयिष्यसि मैं ला करके दूंगा भविष्य काल, समर्पय अभी बच्चे नहीं हुए थे ला करके दूंगा। अब पुत्रान का मतलब सबको एक साथ ला कर दूंगा कि एक एक करके ला कर दूंगा, एक क्लियर नहीं है, लेकिन एक क्लियर है कि समस्त पुत्रों को ला करके दूंगा। समस्त पुत्रों को ला कर दूंगा का दोनों मतलब हो गया, सबको एक साथ ला दूंगा या बारी बारी से भी जितने होंगे। अब आचार्यगण कहते हैं कि वे पहला पुत्र लेकर गए, इसलिए नाम दिए हैं कृतिमंतम, कृतिमंत को लेकर गए। 3 पुत्रों का नामकरण हो चुका था, वास्तव में मुझे 2 का याद आ रहा है, तीसरा मैं बोल रहा हूं प्रथम स्कंद में। एनीवे, तो सुशेष और कृतिमंत। तो जिस प्रकार से एक्सपर्ट स्त्री होती है, जब भोजन में आजकल तो कुकर में भोजन बनता है, प्रेशर कुकर में प्रेशर डाल करके, पहले प्रेशर कुकर में भोजन नहीं बनता था, बटलोही में बनता था है? तो जब भोजन बनाती थी स्त्रियां तो उसमें से 1 चावल लेती थी, यदि 1 चावल पक गया मतलब पूरा चावल पक गया, बात यही है ना। अरे हुंकारू तो भरो, हाँ या ना कहो, सो रहे हो, रात भर सोया कितना सोगे, जगो कम से कम। तो वैसे ही सैंपल प्रस्तुत करने के लिए वसुदेव जी 5 पुत्रों में से 1 पुत्र को लेकर गए। भाई क्या इसका दिमाग है, थोड़ा रिएक्शन समझने के लिए। कृतिमंतम प्रथमजम, जो पहला बेटा जन्म लिया था जिसका नाम कृतिमंत था, उसको लेकर गए। कह अनकदंद अनकदंद भी वसुदेव जी लेकर के गए। तो कंस बड़ा खुश हुआ देख करके कि नहीं नहीं ये तो सत्यनिष्ठ हैं, सत्य में निश्चित हैं। तो कहे कि नहीं 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 आप इसको ले जाइए, अरे इससे हमें क्या तकलीफ है, आफ्टर ऑल ये हमारा भांजा होगा, मैं इसका मामा हूं, तो इससे हमें कोई तकलीफ नहीं है। कहते प्रत्यातु कुमारो यम, यहां पर कुमारो यम कह रहे हैं। कुमार का मतलब होता है 5 साल का बच्चा, कौमार आचरित प्राग्नो। और प्रत्यातु शब्द कहा गया है, मतलब कि वसुदेव जी लेकर करके प्रत्यातु मतलब समर्पित किए, तो मतलब 5 साल का बच्चा था, उंगली पकड़ करके लेकर आए थे। और ये छोटा बच्चा होता तो दो गोद में दिए होते तो कहते नैया इसे ले लो, ले लो नहीं कहते हैं, कहते प्रत्यातु इसे ले जाओ, प्रति आयातु जैसे लेकर के आए वैसे ले जाओ, यानी चला करके लेकर आए चला करके ले जाओ। तो श्रीपाद जी गोस्वामी क्लियर करते हैं कि यह जो बालक था वो 5 साल का था। प्रत्यातु कुमारो अयम, अयम कुमारो, इसी कुमार को, इसी बच्चे को जिसको आप लेकर के आए हो ले जाओ। नहीं अस्ति मे भयम, इस बालक से मुझे कोई भय नहीं है। लेकिन याद रखना अष्टमा आदव, आठवां जब होगा वो मत भूलना, आदव उसको जरूर लेकर के आना, जब ही वो जन्म ले हमें बताना, क्योंकि भय उससे है, लेकर के आना। तो इस प्रकार से जब कंस लौटा दिया तो नारद जी को बेचैनी आ गई। नारद जी समझे बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, यदि कंस लौटा दिया तो मतलब कंस में दया आ गई, और दया आना कंस के लिए अच्छा लक्षण नहीं है। यदि कंस में दया आ जाएगी तो फिर भगवान क्यों मारेंगे इसको, इसमें क्रूरता रहना जरूरी है। तो कंस आकर कंस के पास नारद जी आए और अपना नारदगिरी करना शुरू किए। नारद जी काम है भगवान के चरणों में लोगों को लगाना। तो नारद जी बतलाने लगे कंस को कि देखो तू बहुत मूर्ख आदमी है। कहा कैसे मूर्ख हूं, कहा कि लो तो अपने काल को छोड़ दिया। अरे नारद जी क्या बात कर रहे हो, आप क्यों भड़का रहे हो मुझको। अरे आकाशवाणी ने कहा आठवां संतान, तो नारद जी ने कह रहे मूर्ख गिन यहां से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब इसे बताओ कौन पांचवा है और कौन पहला है, पांच बच्चे हुए थे ना, कौन है गिनो यहां से ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 है। तब कंस का दिमाग खुला, हाँ बात सही कह रहे हैं, कहते तू विष्णु को नहीं जानता है, वो कुछ भी कर सकता है, कहीं से आ सकता है, जब वो खंभा से आ सकता है नरसिंह के रूप में तो क्या पहला बेटा बनकर नहीं आ सकता है, कभी भी आ सकता है। तो उतना तो कंस कन्विंस हो गया, ठीक है, और कहा कि नारद जी कहे देखो कंस तुम्हारा जीवन बड़ा खतरा में है, तुम्हारा केवल बालक से ही देवकी के बच्चों से ही तुम्हारा जीवन खतरा में नहीं है, आज तुम्हारा ऐसा परिस्थिति है कि तू अपने शत्रुओं के इर्द गिर्द घूम रहे हो, तुम्हारे चारों तरफ शत्रु ही शत्रु हैं, सब लोग शत्रु हैं, ये मथुरा में भी शत्रु हैं और गोकुल में भी शत्रु हैं। क्या इसे श्री गौरताई कहते नंद आदि जे ब्रजे गोपा यश्चाम ईशाम चजोषित वृष्णयो वसुदेवाद्य देवाक्याद यदुश्रिय सर्वे वै देवता सर्वे वै देवतांस उभयोरपि भारत ज्ञातयो बंधुसुहृदो ये च कंस अनुसृत एतत् कंसाय भगवान संशयाभेद्य नारद भूरिभाराणानां दैत्यानां च वधेदतम। पृथ्वी का दुख दूर करने के लिए, कंस का वध कराने के लिए नारद जी वह सीक्रेट बतला दिए। कहते हैं कि नंद आदि जितने ब्रज में हैं और विष्णु देवकी वसुदेव अक्रूर ये जितने लोग हैं, तुम्हारा बाप ये तुम्हारा राजा सुरसेन ये सब के सब देवता के अंश हैं, सब देवता ही हैं। तो मानो कंस कहा कि नारद जी आप क्यों भड़का रहे हो हमारे परिवार के, क्या लड़ाई कराना गृह युद्ध छिड़ाना चाहते हो, क्या क्यों ऐसा कर रहे हो। नारद जी के भाई देखो तुम्हें मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो। तो कंस बोला प्रमाण क्या है आपके कहने का? कहा प्रमाण, अरे मैं भी वहां था जब ये लोग गए थे ब्रह्मा जी के साथ में भगवान के पास, तो मैं भी उस सभा में था और भगवान ने सबको आदेश दिया, सब देवताओं को और स्त्रियों को, जाओ तुम लोग गोकुल में और मथुरा में जन्म लो। तो हाथ कंगन को आरसी किया, जब हाथ में कंगन है तो दर्पण की जरूरत क्या है? अरे मैं साक्षात वहां सुना था। देखो आजकल लोग सुन करके, सुने हुए बात पर विश्वास नहीं करते हुए देखे हुए बात पर विश्वास करते हैं, लेकिन पहले लोग सुने हुए बात पर विश्वास करते थे। शब्द प्रमाण बड़ा प्रमाण है। तो नारद जी सुने थे और नारद जी देखे। नारद जी के लिए निसम्य शब्द आया हुआ है। निसम्य का अर्थ होता है नि उसर्ग में सम्य कृदंत लगा हुआ है। इसका मतलब कि नारद जी भली भांति बात बताए कंस को कि देवता लोग क्यों आए हैं, इनका कारण क्या है आने का, प्रयोजन क्या है, इत्यादि इत्यादि सब कुछ बतला दिए थे, टॉप टू डाउन बतला दिए थे। अब इतना कह करके नारद जी चल दिए, नारायण नारायण ऋषये विनिर्गते कंसो यद। और जब चले गए नारद जी तो कंस क्या किया है उसमें से दो बात जानने योग हुई थी और तीन बात करने योग नारद जी कहे थे। तो कंस ने दो बात क्या जाना कि देवकी वसुदेव के साथ साथ ब्रज में जितने लोग हैं सब देवी देवता हैं, और दूसरा बात समझा कि देवकी के गर्भ में आठवां संतान जरूर आएगा, देवकी का ही गर्भ होगा जो हमारा काल होगा। देवक्या गर्भ संभूतम विष्णु च स्वबधम प्रति। आकाशवाणी कहा था कि आठवां, लेकिन नारद जी बदल दिए। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं देवक्या गर्भ संभूत विष्णु, देवकी के गर्भ में वह विष्णु आएगा। अब तक से था कि आठवां गर्भ, लेकिन वो कन्फर्म हो गया कि वह विष्णु। तब कंस को याद आया कि बाप रे बाप, किस प्रकार से जब देवासुर संग्राम हुआ था तो उस समय यही विष्णु मुझे मारा था। कंस काल निमित्त था ना, तो उसे याद आ गया कि यही विष्णु मुझे मारा था, और उसे गुस्सा आया। तो चार करणीय कार्य किया। क्या करणीय कार्य किया? देवकी और वसुदेव को तुरंत हाउस अरेस्ट करा दिया, जेल में नहीं डाला। मूवी में लोग देखते हैं जेल में डाल दिया, नहीं, जेल में नहीं डाला कंस, हाउस अरेस्ट करा दिया। दूसरा काम किया कि जितने सगे संबंधित थे, सो रहे हो तुमको ही पूछा, टाइट बैठे हो ना, जितने सगे संबंधित थे अब उन लोगों को मारना था, लेकिन एक बाइक मार देगा तो विद्रोह हो जाएगा। चलो सेना अपना पर्याप्त न हो जाए, सब जितने उनके, अब उसको पता लगाना था कि कौन हमारे पक्ष में है कौन दूसरे के पक्ष में है, तो पता लगाना था। तो उसने दूसरा काम किया, जितने भी जाति लोग थे, जितने सगे संबंधित लोग थे, उन लोगों को मारने का अब प्लान बनाने लगा। और तीसरा काम किया कि महाराज सुरसेन जो मथुरा के राजा थे उनको बंदी बनाकर जेल में डाल दिया, उनको हाउस अरेस्ट नहीं किया। हाउस अरेस्ट मतलब कोई आकर मिल सकता है, लेकिन कारागार में सब लोग नहीं मिल सकते हैं। तो सुरसेन को ही एकमात्र कारागार था। स्वयं निगृह बुभुजे सुरसेना महाबला। सुरसेन जी को महाबलवान कहा गया है और कंस भी महान बलवान है। तो कंस सुरसेन पर भारी पड़ा और उनको जेल में डाल करके और स्वयं राजा बन गया। अब चौथा काम क्या किया वो दूसरा अध्याय से शुरू किया गया है। चौथा काम किया कि कंस जब दिग्विजय पर चला था तो बहुत चेला चपाटी उसके हो गए थे, बहुत लोगों को जीत लिया था। प्रलंभ
प्रलंभ बक चारुण तृणावर्त महासनै मुष्टिका आरिष्ट द्विविद पुतना केशु धेनुकै अन्येश्चासुरा भूपालय बाण भौमादिभियुत यदुनाम कदनम चक्रे बलि माघदश्रय। ये सब नाम बताया गया है कुछ लोगों का, प्रलंबासुर बकासुर चारुण तृणावर्त और महासनई मतलब अघासुर मुष्टिक अरिष्टासुर द्विविद पुतना केसी धेनुकासुर और जितने भी पृथ्वी पर असुर लोग थे भौमासुर आदि, इन लोगों के साथ साथ महाबलशाली मगधराज जरासंध को भी वह सभा बुलाया है, एजीएम बुलाया, डिपार्टमेंट हेड मीटिंग बुलाया और सब बात बतला दिया और आदेश दिया कि जाओ तुम लोग सब लोग जितने भी हमारे विद्रोही हैं उन पर आक्रमण करो। सब लोग गए आक्रमण करने के लिए, इस प्रकार से परेशान करने लगे। और इधर कंस क्या किया कि जो षड गर्भ थे छह बच्चों को वन बाय वन कंस मारना शुरू किया। वसुदेव जी पहला बच्चा लेकर गए लेकिन थैंक यू नहीं बोले थे कि जानते थे कंस क्रूर है, कभी बुला सकता है। और नारद जी कहने के तुरंत बाद बुला लिया और लगा मारने, सभी बच्चों को मार दिया। तो यहां पर कहा गया है कि हतेशु सड़सु बालेशु देवक्या अग्रसेनिना, अग्रसेनिना यानी कंस, देवक्या बालेशु सड़सु हतेशु, देवकी के छह पुत्रों का वो हनन किया। देखिए ये छह बच्चे थे, कौन थे, ये षड गर्भ कहा गया है। ये छह भगवान के छह ऐश्वर्य जो हैं वो छह ऐश्वर्य हैं जो कि प्रजापति मरीचि के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए थे, जो कि ब्रह्मा जी के नाती थे। तो नाती का संबंध दादा दादी से ज्यादा होता है। तो दादाजी से एक दिन, मैं संक्षिप्त में कह रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कृष्ण के आविर्भाव लीला कहना, थोड़ा समय ज्यादा जाएगा तो आप लोग ध्यान रखना, इसके लिए चिंता मत करना। तो ये षड गर्भ जो थे, नहीं ये छह मरीचि पुत्र ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से पूछने लगे कि दादाजी आप इतने महान कैसे हो गए, अपने महानता के विषय में बताएं। तो स्वाभाविक है कि सब व्यक्ति अपना गुणगान करना चाहता है, थोड़ा भी गुण हो तो ज्यादा गुण करता है अपना कि मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया। तो ब्रह्मा जी तो महान वैष्णव हैं, भक्त हैं, आचार्य हैं, महाजन हैं, वो भगवान का गुणगान करने लगे। अपना गुणगान नहीं किए, भगवान का गुणगान किए कि भगवान के कृपा से सब प्राप्त हुआ, भगवान से मैं शब्द सुना तप और तपस्या किया और तपस्या करने के बाद जो तुम लोग देख रहे हो, उन्होंने अपने धाम का दर्शन कराया, उन्होंने कहा कि तुम सृष्टि करो तो मैं इस प्रकार से कर रहा हूं। ये सुन लिए और सुनने के बाद में सेक्रेट प्राप्त कर लिए, फॉर्मूला प्राप्त कर लिए बड़ा होने का। अब इन लोगों के मन में भी ऐसे ही भावना आई कि जैसे दादाजी बड़े हुए हम भी वैसे बड़े हो जाए। ते लोग दादाजी से परमिशन नहीं लिए, डायरेक्टली तपस्या करने चले गए। तक तरह चोरी हो गया ना, फॉर्मूला चोरी कर लिए, ब्रह्मा जी के फॉर्मूला को चोरी कर करके और तपस्या करने चले गए। और यह भाव जो कहलाता है आसुरी भाव कहलाता है। आसुरी भाव के जो लोग होते हैं वो शास्त्र के नियम कानून को नहीं मानते हैं। यस शास्त्र विद्धिम उत्सृज्य वर्तते काम कारत न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गति। ये दैवी आसुरी प्रकृति के लोगों का जो स्वभाव का वर्णन है 16वें अध्याय में गीता के, ये अंतिम श्लोक है कि असुरों का स्वभाव कैसा होता है कि अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए
कोई परमिशन नहीं लेते हैं। तो जो ब्रह्मचारी या जो डिवोटी लोग वृंदावन और मायापुर जाने के लिए बिना प्रेसिडेंट से पूछे टिकट निकाल लेते हैं, वो लोग ऐसे ही होते हैं, वो आसुरी प्रवृत्ति है। हम लोगों के समय में जमाना था कि जाने से पहले पूछते थे, प्रभु जी हमें वृंदावन जाना है, तो क्या ठीक है देखेंगे। अब तो यहां पहले टिकट निकाल लेते हैं, पैसा रहता है टिकट निकाल लेते हैं। ये आश्रित प्रवृत्ति है, ये दैवी प्रवृत्ति नहीं है। शास्त्र को अपने जीवन में कैसे उतारना सीखना चाहिए शास्त्रों से, ये नहीं कि शास्त्र केवल पेज पर लिखे हुए इसके लिए है, हमारे जीवन में उतारने के लिए है। कुछ काम करने से पहले परमिशन लो। तो ये लोग परमिशन नहीं लिए, यही गलती कर दिए। तो न स सिद्धिम आपनोति, सिद्धि की प्राप्ति नहीं होगी, न सुखम, न सुख की प्राप्ति होगी, न परम गति, न परम गति की प्राप्ति होगी। तस्मा शास्त्रम प्रमाणम थे कार्य अकार्य व्यवस्थित, इसलिए शास्त्र के प्रमाण से, इसलिए परमिशन लेकर काम करो, खुश रहोगे, बिना परमिशन के मत। अब प्रेसिडेंट कह दिया कि नहीं नहीं तुम नहीं जा सकते हो, बहुत काम है, नहीं जा सकते हो, बेचारा ओबेडियंट है, बात मान भी लेगा तो टिकट कैंसिल करने जाएगा, तो टिकट कैंसिल कर, पैसा उसमें कटेगा ना, है? कुछ पैसा कटेगा, 10% करे 20% करे, वो पैसा है किसका, भगवान का ही तो है ना। तो ये आसुरी प्रवृत्ति है कि बिना परमिशन के काम करना। तो ब्रह्मा जी ने कहा तुम लोग आसुरी प्रवृत्ति का काम करते हो, जाओ तुम लोग असुर बन जाओ, ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया, असुर बन जाओ। तो वही लोग हिरण्यकश्यप के एक पुत्र थे, उनका नाम था हिरण्यकश्यप, कई एक पत्नियां थी, कयाधु से ये 6 पुत्र थे, प्रहलाद इत्यादि, और अन्य पत्नियां भी थी। तो एक पत्नी के पुत्र थे कालनेमी, तो उनके 6 पुत्र हुए ए असुर। और ए लोग भी हिरण्यकश्यप के पास एक दिन गए, दादाजी बताइए आप इतने कैसे महान हो गए कि आपके डर से इंद्र आकर के आपका सेवा करते हैं, वायु देवता झाड़ू लगाते हैं, सब देवता लोग आपके शरण में रहते हैं, आप इतने महान हैं, कैसे महान हो गए। तो आश्रय प्रवृत्ति था, उन्हें कह दिया क्या क्या नहीं किया, जब मैं तपस्या किया एक पैर पर खड़ा होकर के टोप पर, हमारा पूरा शरीर दीमक का घर बन गया था, ब्रह्मा जी को पहचान में नहीं आया जब देखे तो ब्रह्मा जी, सब बात बतला दिए। फिर तपस्या, इन लोगों को भूत पकड़ लिया तपस्या का पहले से ही, फिर तपस्या करने चल दिए। अब देखिए क्लासिफिकेशन, यहां भी आश्रित प्रवृत्ति किए, पूछे नहीं, लेकिन चोर दूसरे को थोड़े चोर कहेगा। अब हिरण्यकश्यप थोड़े उसको कहे तुम असुर हो गए हो, वो तो स्वयं असुर है, उनको असुर थोड़े कहेगा। तो उसने श्राप दे दिया मूर्ख कहीं का, तुम्हारा बात नहीं माना, हमसे पूछा भी नहीं, तुम लोग यह कर दिया, जाओ तुम लोगों का हत्या तुम्हारा बाप करेगा, श्राप दे दिए। हां जब ब्रह्मा जी ने श्राप दिया था तो इन लोगों ने ब्रह्मा जी का चरण पकड़ लिया था, देवता लोग थे, कि तो हम लोग का उद्धार कैसे होगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा था कि द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण का भगवान कृष्ण के रूप में आविर्भूत होंगे तो उनका उच्छिष्ट तुम लोग खाओगे, उनका उच्छिष्ट ग्रहण करोगे, तब तुम लोगों का उद्धार होगा। तो हिरण ब्रह्मा के श्राप से ये लोग असुर बने, और हिरण्यकश्यप के श्राप से कालनेमी के पुत्र ये लोग देवकी के गर्भ में आए, षड गर्भ के रूप में। अब कोई प्रश्न कर सकता है कि सतयुग से और द्वापर के बीच में लोग थे कहां? तो आचार्य गण कहते हैं बलि महाराज के शरण में थे, पाताल लोक में, पाताल लोक में षड गर्भ के रूप में थे, और द्वापर युग में फिर ये जन्म लिए। जब इन लोगों का वध हो गया तो अभी मरे नहीं थे, इनकी मुक्ति नहीं हुई थी। जब भगवान कंस का वध कर करके द्वारिका बसाए थे तो 9 वृंदावन में ब्रज लीला और कृष्ण के विभिन्न लीलाओं का वार्ता हुआ करता था। तो उस समय देवकी जी की इच्छा हुई, जब उन्होंने सुना कि कृष्ण संदीपनी मुनि के पुत्र को, मरे हुए पुत्र को वापिस ला दिया, मैं इसलिए कह रहा था तुम सो रहे हो, राधा क्या कहना है, तो बोला नहीं सो नहीं रहा हूं। आंख खोल करके सुनो, आंख बंद करके मत सुनो। वो परीक्षित महाराज आंख बंद करके सुन सकते थे, वो भी बेचारे खोले थे। कलयुग में आंख बंद करना मतलब समाधि, निद्रा समाधि। तो एनीवे देवकी जी प्रार्थना की भगवान से, कृष्ण से कही कि कृष्ण जैसे संदीपनी के पुत्रों को ला दिए थे, पुत्र को ला दिए थे, क्या हमारी इच्छा है कि तुम्हारे छह भाइयों को देखो कैसे लोग हैं। तो कृष्ण का बिल्कुल मां ऐसा ही करूंगा। तो वे त्रोण छह पुत्रों को जीवित कर दिए, भगवान कृष्ण ला दिए। और जैसे ही छह पुत्र जीवित हुए, देवकी के अस्तन से दूध आने लगा। तो भगवान देख लिए, भगवान ने कहा रे लड़े सिपाही नाम सरदार के, काम मैं करूं और दूधियल पियेंगे, ये ठीक नहीं है। और वैसे भी मैया मैं छोटा हूं तो मेरा अधिकार पहले है। तो जाकर के कृष्ण देवकी का अस्तन पान किए और उसके बाद में ये छह लोग अस्तन पान किए। तो ये हो गया कृष्ण का उच्छिष्ट और इस प्रकार से इन लोगों की मुक्ति हुई। तो ये षड गर्भ थे। तो यहां पर आया वो हतेशु सर्ष बाल देवक्या अग्रसेनिना सप्तमो वैष्णवम धामम यमनंतम प्रचक्षते गर्भो बभूह देवक्या हर्ष शोक विवर्धित। भगवान का धाम अवतरित हुआ माता देवकी के गर्भ में। भगवान आते हैं उनके पहले उनका धाम आता है। हम लोग जब जमीन खरीदते हैं तो घर बनाते हैं, घर बनाने के बाद इंटीरियर डेकोरेशन करते हैं, इंटीरियर डेकोरेशन करने के बाद गृह प्रवेश करते हैं ना, बिना घर बनाए थोड़े जाएंगे। घर बन गया है, इंटीरियर डेकोरेशन ना होता अंदर जाएंगे ना, जिदास जाओगे आप, नहीं ना, पूरा डेकोरेशन होना चाहिए। तो इंटीरियर का काम करने के लिए बलराम जी आए। कहा गया है कि तीन काम के लिए बलराम जी आए। एक काम था भगवान के धाम को स्थित करना देवकी के गर्भ में, क्योंकि भगवान आने वाले हैं तो भगवान के रहने योग्य स्थान होना चाहिए। श्रीपाद जीव गोस्वामी कहते हैं कि देवकी देवी है, देवकी है, देव माता है, तो वह ट्रांसडेंटल है, जैसे वृंदावन ट्रांसडेंटल है। लेकिन वृंदावन में जाकर के लोग गंदगी फैला देते हैं, फैलाते हैं कि नहीं, गंदगी फैलाते हैं। वृंदावन चिन्मय है, जमुना जी चिन्मय है, लेकिन जमुना जी में, गंगा जी में, वृंदावन में गंदगी फैला देते हैं लोग। तो वैसे ही ये षड गर्भ असुर थे, उनकी प्रवृत्ति असुर जैसी थी। तो असुरों का स्वभाव है गंदा रहना। तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारे जीवन में हम कितने गंदे हैं, कितने स्वच्छ हैं। व्यक्ति असुर नहीं है, स्वभाव उसको असुर बना देता है। यदि कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी आश्रम में अपना कॉपी इधर फेंक दिया, गमछा इधर फेंक दिया, एक ही वस्त्र, एक ही बिछावन पर, बेडशीट पर एक साल भर सो रहा है, सब गंदगी से रहता है, तो उसमें आसुरी प्रवृत्ति है। क्लीननेस इज नेक्स्ट गॉडिनेस, सात्विक प्रवृत्ति नहीं है, तामसी प्रवृत्ति है। असुर लोग गंदा कर देते हैं। तो भगवान गंदे जगह पर निवास नहीं करते हैं, इसे बलराम जी सफाई मंत्री बनकर के आए थे सफाई करने के लिए। और तीसरा काम बलराम जी आए थे करने के लिए, कंस को कंफ्यूज करने के लिए। जब गर्भ को जोग माया ने देवकी के जठर से लेकर के रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया था, तो सातवां गर्भच्युत हो गया था। तो आठवां गर्भ जो था, जिसमें भगवान थे, वो सही में आठवां गर्भ था कि सातवां था, इस बात को कंफ्यूज करने के लिए बलराम जी आए थे। तो जब आए देवकी के गर्भ में, देवकी क्या, तब देव क्या हर्ष शोक विवर्धनम, विवर्धनम विशेष रूप से देवकी में आनंद भी आया और बहुत भय भी हुआ। आनंद आने का कारण आचार्यगण कहते हैं क्योंकि भगवान जहां होते हैं वहां आनंद ही होता है। भगवान चिन्मय है, भगवान का नाम चिन्मय है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवान का धाम चिन्मय है, भगवान का प्रसाद चिन्मय है, भगवान के भक्त लोग चिन्मय है, भगवान का दर्शन चिन्मय है, सब कुछ चिन्मय है। और चिन्मय वस्तु जो होता है आनंद का कारण होता है। केवल आनंद कंद भज भज भाई चैतन्य निताय सुदृढ़ निश्वास करी। आनंद केवल आनंद ही आता है, आनंदम बुद्धिवर्धनम, आनंद की वृद्धि होती है। तो बलराम जी आए हैं, भगवान के प्रथम सेवक आए हैं, जो साक्षात कृष्ण हैं, केवल रंग मात्र भेद, केवल भेद है तो रंग का, एक श्यामले हैं और एक गोरे हैं, तो साक्षात कृष्ण ही हैं। तो भगवान आए हैं, भगवान के प्रथम सेवक बलराम जी आए हुए हैं। तो यह देवकी के आनंद को प्रकट किया। भक्त को देख करके दूसरा भक्त को आनंद आता है। यदि भक्त देख करके दूसरे भक्त को आनंद न आए तो समझना चाहिए कि कुछ गड़बड़ है। भक्त को देख करके जिस दिन घर में भजन होता है, जिस दिन भक्त लोग घर पधारते हैं, से दिन गोलोकेर भाए, वो गोलोक वृंदावन के समान है, वैकुंठ के समान है, आनंद का विषय है। तो देवकी भगवान की शुद्ध भक्त हैं, भगवान जिसके पुत्र होने वाले हैं, तो देवकी को आनंद आया। और शोक अभिवर्धनम, बहुत दुख भी हुआ, क्योंकि अपने आंख के सामने देवकी देखी थी 6 पुत्रों को मरते हुए। यहां पर तो छोटा हो जाए तो कुछ घटना हो जाए तो पानी में कभी डूब रहे हो पानी देख करके डर आएगा। मुझे याद आ रहा है कि बीरबल ने एक बार, अकबर ने एक बार बीरबल आदि मंत्रियों को बिल्ली दे दिया बिल्ली पालने के लिए, और कहा 7 दिन के बाद एग्जामिनेशन होगा, जिसका बिल्ली हट्टा कट्टा होगा उसको हम प्राइस देंगे। बीरबल ने स्वयं को कहा कोई राजा कोई काम धंधा नहीं है, अपने तो उतना ही पैसा मिलता है, उतना घर गृहस्थी चलता है। बीरबल ने क्या किया, वो बिल्ली को लाया और खोलते हुए दूध में उसका मुंह डाल दिया। जब उसका मुंह जल गया तो दूसरे दिन ठंडा दूध लेकर के आया। बिल्ली जब ही दूध देखी चली भाग वहां से। 7 दिन के बाद तो अपना अपना बिल्ली लेकर के आए, बीरबल भी लाया, सबकी बिल्ली हट्टी कट्टी, बीरबल की बिल्ली बिल्कुल दुली पतली। अकबर ने कहा क्या हो गया बीरबल? कहा महाराज आप पक्षपात किए हो, सब लोगों को अच्छा बिल्ली दिए हो, मुझे खराब बिल्ली दिए हो। कैसे कहते? अरे मेरी बिल्ली दूध देखते ही भाग जाती है, दूध पीती ही नहीं है। अकबर ने कहा तुम पागल हो गया, बिल्ली को दूध अच्छा लगता है, मंगाइए देखिए। अकबर दूध मंगाए, ज्यों ही बिल्ली दूध देगी चली भाग वहां से। तो एक बार वंस बॉर्न ट्वाइस साई। तो देवकी ने देखा था कि 6 पुत्रों को कंस कैसे मारा था, और यही देवकी के भय का कारण था। भगवान देखे कि किस प्रकार से उनके भक्त लोग बड़े दुखी हैं, भक्त लोग कितने बड़े दुखी हैं। भगवान देखे, भगवान अपि विश्वात्मा विदित्वा कंसजं भयं यदुनां निजनाथानां जोगमाया समादित, जोगमाया समादित। भगवान जोग माया को आदेशित किए, समाधिशत जोग माया को। भगवान की 9 स्वरूपाशक्ति हैं, जैसे विमला देवी कृपा, कृपा शक्ति विमला शक्ति, वैसे ही है जोग माया। ये भगवान की स्वरूपा शक्ति है। भगवान की अन्य 12 शक्तियां हैं, जिन 12 शक्तियों का गुणगान किए हैं अक्रूर जी। जब कृष्ण बलराम को लेकर के जा रहे थे अक्रूर जी, और जब जमुना जी में स्नान किए तो देखे कृष्ण बलराम को, फिर बाहर आए तो देखे वही रथ पर बैठे हुए हैं, फिर स्नान किए तो सबका दर्शन किए, उसमें से दर्शन किए हैं श्रिया पुष्टा गिरा कात्न्या कृत्या तुष्टे लयो जया विदया अविदया सत्या माया च निवेशिवत। उसने भगवान को देखा, जो भगवान के बाहर बाहर शक्तियां हैं, ये 12 शक्तियां जो हैं ये भगवान की बहिरंग शक्तियां हैं, और 9 जो शक्तियां हैं वो स्वरूपा शक्तियां हैं। ये जो 12 शक्तियां हैं उसमें से हैं लक्ष्मी, पुष्टि, श्रिया पुष्टया, गिरा, गिरा मतलब सरस्वती, कांति, कृति, तुष्टि, ये जो 6 शक्तियां हैं ये भगवान के 6 ऐश्वर्य हैं। उसके बाद इला शक्ति, इला शक्ति पृथ्वी को कहा जाता है, भूदेवी को इला शक्ति कहा जाता है, इलावर्त, इला शक्ति। उसके बाद ऊर्जया, ऊर्जा शक्ति यानी लीला शक्ति, भगवान जी से लीला करते हैं। विद्या अविद्या, जीव को मोक्ष दिलाने वाले शक्ति और जीव को बंधन में डालने वाली शक्ति। विद्या अविद्या सत्या माया च निवेशया और माया देवी, ये 12 जो शक्तियां हैं ये भगवान के बाहर देखा अक्रूर जी ने देखा, और भगवान के स्वरूपा जो शक्ति हैं वो 9 हैं, और उसमें से 1 हैं जोग माया। तो भगवान अपने स्वरूपा शक्ति जोग माया को यहां पर आदेश दिए हैं, कहते हैं भगवान अपि विश्वात्मा। श्रीपाद जी गोस्वामी कहते हैं ये भगवान अपि शब्द का वर्णन करते हैं, भगवान स्वयं नित्य रूप श्री कृष्ण विश्वात्मा सर्वांशी अपि शब्द क्षीरोदकसाई उपेक्षया पूर्व सब ब्रह्मादिन समाधिस्त अधुना स्वयं सवाप जोग माया इति। भगवान ने यहां भगवान अपि शब्द कहने का मतलब ब्रजेन्द्रनंदन श्याम सुंदर षड ऐश्वर्य परिपूर्ण भगवान, न कि क्षीरोदक साई विष्णु। ब्रह्मादि देवता कहां गए थे? अरे हुंकारी भर कहां गए थे? क्षीर सागर पर। तो क्षीरोदक साई विष्णु का उपदेश रिले किए थे ब्रह्मा जी, लेकिन जोग माया जो ब्रह्मा जी को भगवान का आदेश रिले किया गया था क्षीरोदक विष्णु के द्वारा, वो क्षीरोदक साई विष्णु थे। इसीलिए सामान्य लोग कहते हैं कि कृष्ण जो है वो विष्णु के अवतार हैं, क्षीरोदक साई विष्णु के अवतार हैं। लेकिन जो भागवत के जानकार लोग हैं वो लोग समझते हैं कि भगवान अपि, वे भगवान जो कौन है, विश्वात्मा, जो पूरे जगत के आत्मा है, जिनसे सब कुछ संचारित होता है। विदित्वा कंसजम भयम, भगवान समझ गए कि मेरे भक्तों पर कंस के द्वारा, अत्याचार के द्वारा कितना कष्ट हो रहा है, भक्तों को कितना हमारे भक्त लोग कष्ट सह रहे हैं। भगवान सब सह सकते हैं लेकिन अपने भक्तों का कष्ट नहीं सह सकते हैं। यदुनाम निज नाथानाम, भगवान अपने भक्तों के नाथ हैं, प्रभु हैं, और देवकी वसुदेव आदि जो जदुवंशी हैं उनके प्रभु नाथ हैं। तो देवकी वसुदेव के दुख को भगवान देखे, 6 पुत्रों को कैसे मारा, अन्य ब्रज गोकुल सॉरी मथुरा वासियों पर कंस का कैसा अत्याचार था कि सब लोग कंसजम भयम, विदित्वा शब्द आया हुआ है, सम्यक भगवान से कुछ भी छिपा नहीं हुआ है, क्योंकि वे कैसे हैं, विश्वात्मा, सबके दिल में हैं। तो भगवान सब कुछ जान गए, और जान करके जोग माया समाधि स, जोग माया को आदेशित करते हैं, सम आदेशित, सम्यक रूप से आदेश कर रहे हैं सोच समझ करके। माया बड़ा खतरनाक है, है? भगवान माया के प्रभु मायापति माया को कह रहे हैं। और उसके बाद ये श्लोक आ रहा है, देखिए इस श्लोक को ध्यान से देखिएगा। चार पांच श्लोक है, उसके बाद में देव स्तुति होगी जो कि आज दोपहर के बाद होगा। तो जहां तक अब तक जा सकते हैं जा सकते हैं, 9:30 में क्लास खत्म कर दूंगा अभी बोलता हूं, उसके बाद में वहां पर होगा। कहते गक्षम देवी ब्रजम भद्रे गोप गोभीर अलंकृतम रोहिणी वसुदेवस्य भार्याते नंद गोकुले अन्याश्च कंस संविघ्नः विवरेषु वसन्तिः। कहते गक्ष देवी ब्रजम भद्रे, एक एक वर्ड का बड़ा सुंदर मीनिंग है। भगवान आदेश दे रहे हैं, ये गक्ष शब्द आदेश परक शब्द है, लेकिन भगवान यहां पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं। सम आदिशित का अर्थ है सम्यक रूप से आदेश दिए, आदेश सम्यक रूप से देने का मतलब सब समझा बुझा करके भगवान भेज रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और यहां पर माया देवी को भगवान देवी कह रहे हैं, यहां पर उनको देवी कह रहे हैं, माया को क्यों देवी कहे हैं। क्योंकि यहां पर माया नहीं कहे हैं, यहां पर देवी कहे हैं और भद्रे कह रहे हैं कल्याणमयी। देवी जो होती हैं वो कल्याण का कार्य करती हैं। भगवान जोग माया को गोकुल भेज रहे हैं, काम करना है मथुरा में लेकिन भेज रहे हैं गोकुल। प्रश्न उठता है भगवान ने डायरेक्टली मथुरा क्यों नहीं भेज दिया, गोकुल के भेजा? क्योंकि माया का स्वभाव है कि लोगों को मोह में बांध करके रखना, लोगों को मोह में बांध करके रखना, ये माया का स्वभाव है। भगवान मथुरा नहीं भेजे माया को, क्योंकि मथुरा में असुर लोग निवास करते हैं, दैत्य निवास करते हैं, और दैत्यों के भगवान कौन है? माया देवी, दुर्गा देवी। दुर्गा देवी दैत्यों के भगवान हैं, दैत्य लोग पूजा करते हैं दुर्गा देवी का। तो भगवान समझे कि ये माया देवी जब चली जाएगी मथुरा तो कंस इत्यादि पूजा करके उन्हें खुश कर देंगे, तो फिर अपना काम नहीं करेगी, इसीलिए उसको मथुरा न भेज कर करके उसको गोकुल भेजी। इसीलिए उन्होंने देवी कहा, देवी मतलब कल्याणकारी कार्य करने वाली। आपको एक कल्याणकारी कार्य करना है जिसके लिए मैं आपको भेज रहा हूं। आप तो कल्याणी कार्य करने के लिए आपको देवाश्रित होना पड़ेगा, देवताओं के आश्रय में रहना पड़ेगा। और गोकुल में भी देवता हैं और मथुरा में भी देवता हैं, लेकिन वहां पर एक असुर भी है, और एक ही नहीं अन्य असुर भी हैं। और जो देवता लोग तो जेल में है अभी, जो देवता नहीं है वो घूम रहे हैं, लेकिन गोकुल वाले अभी जेल में नहीं, सब देवता गोकुल में हैं। इसलिए उन्होंने दैत्य का कार्य न सिद्ध करने पाए माया देवी, इसलिए भद्रे शब्द कहते हैं और कहते हैं कि आप कल्याण का काम करने जा रही हो इसलिए आप कल्याणी हो। और आप कहां जाओ? गोकुल में जाओ। इसलिए कहते हैं देवी। हरि बोल। कहां जा रहे हो? क्या नाम अपना? नहीं, लाइफ मेंबरशिप वाला। अद्भुत, इधर आओ, अद्भुत लीला भी हो रही है। इधर आओ, इधर आओ, ये अद्भुत है। तो नाम भी अच्छा मिला है अद्भुत। एनीवे, देव कार्य के लिए जा रही हैं, और जो भी देव का कार्य करता है उसका कल्याण ही होता है। तो जो व्यक्ति प्रचार कार्य में लगा हुआ है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में लगा हुआ है, श्रील प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शन को उपदेश देने में लगा हुआ है, उसका हमेशा कल्याण होगा। ये भगवान की वाणी है, मेरी वाणी नहीं है। गच्छन् देवी ब्रजम भद्रे, तुम्हारा कल्याण हो क्योंकि तुम देव कार्य में लगने जा रही हो। और ब्रज में भेजे क्योंकि ब्रज जड़ नहीं है। ब्रज का मतलब होता है चलायमान, ब्रज चेतन है, वहां के जितने लोग हैं सब चेतन हैं, कोई जड़ नहीं है, यानी सब भक्त हैं ब्रज में। और भगवान कहते हैं कौन लोग वहां पर हैं, कहते हैं गोप। गोपी शब्द छिप गया है इसमें, वो अंतर ध्यान समास कहा जाता है, जो कभी कभी शब्दों में एक शब्द खत्म हो जाता है, तो गोपी शब्द इसमें छिप गया है। गोप का अर्थ एक आचार्य कहते हैं, गो मतलब इंद्रियां और प मतलब पान करना, या पी मतलब पान करना। कृष्ण रस पीवती इति गोपी, यस्य इंद्रिया कृष्ण रस पीवती इति गोपी, जिनकी इंद्रिया कृष्ण रस का पान करती हैं वो हैं गोपी। यानी जो निरंतर कृष्ण का नाम जपता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, वही गोप है और वही गोपी है। ब्रज में 24 hours a day ब्रजवासी लोग कृष्ण का नाम लेते हैं, राधे राधे हरे कृष्णा कम करते हैं, राधे राधे ज्यादा करते हैं, निरंतर कृष्ण नाम में, राधा रानी के नाम में लगे रहते हैं, इसलिए वे लोग गोपी हैं। बॉम्बे वालों को गोपी कोई कहता है, है? आप बताओ इंडिया में कौन स्थान है जहां पर गोप और गोपी हैं? कोई स्थान है हनुमान जी? हाँ बिल्कुल सही बताया, वृंदावन ही, ब्रज ही एकमात्र स्थान है, मथुरा में भी नहीं, मथुरा में गोपी नहीं कहते हैं, केवल ब्रज में ही गोपी कहते हैं, मथुरा में भी गोपी नहीं कहते हैं, गोपी नहीं कहते हैं, केवल ब्रज में, चाहे नंदगांव हो, बरसाना हो, गोवर्धन हो, लाला लाली और गोप और गोपी, केवल वृंदावन में ही कहते हैं। और भगवान कहते हैं गच्छन् देवी ब्रजम भद्रे, गोप गोपी, गोप ही अलंकृतम, थोड़ा रसप्रद इसको लिया जाए, अपभ्रंश भाषा में कहा जाए तो मानो जोग माया कह रही, अरे भगवान हमको कहाँ वहां भेज रहे हैं मृत्यु संसार में, आपके पास रहने में कितना अच्छा है, फर्स्ट क्लास हलवा पूड़ी मिल रहा है, जैसे हमारे भक्त लोग कहते जाओ बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, अरे कहाँ भेज रहे हैं मंदिर में कितना अच्छा है, यही कहते हैं ना, बुक डिस्ट्रीब्यूशन तो नानी मर जाती है, नहीं जाएंगे रोड पर, बस खाली पड़ा हुआ है। तो भगवान जानते थे कि जोग माया भी ऐसा कुछ कहेगी, तो भगवान कहते हैं चिंता मत करो, तुम्हारी इंद्रियां हमेशा परिपूर्ण रहेगी, वहां पर भक्तों की संगति तुम्हारी होगी, वो अलंकृत सब जगह केवल ग्वाल बाल गौवें, यही सब है वास्तव में, जहां पर गोप और गौवें हैं वहां अच्युत जरूर हैं, और जहां अच्युत हैं वहां कोई तकलीफ नहीं। न भवंती ही भद्राणी, ब्रह्मा जी का बात है, देवताओं से कहते हैं कि हे देवतागण, जहां पर विप्र विप्र गौ विप्राणाम गवानाम गोविंद आश्रय, जहां पर ब्राह्मण यानी वैष्णव गाय और गोविंद का आश्रय हो, वहां न भवंती भद्राणी, वहां कोई अमंगल नहीं होता है। तो कह रहे हैं भगवान इनडायरेक्टली कि जाओ तुम्हारा कोई अमंगल वहां नहीं होगा, तुम्हारा कल्याण होगा भद्रे। रोहिणी वसुदेवस्य भार्या ते नंद गोकुले, तो मानो इतना कहने के बाद ठीक है भगवान मैं जाऊंगी, लेकिन करना क्या है बताइए, तो कहते हैं जाओ वहां पर रोहिणी वसुदेवस्य, वसुदेव जी की 12 पत्नियां थी, उसमें से प्रथम पत्नी थी रोहिणी। वसुदेवस्य भार्या, देवकी भी थी लेकिन वसुदेवस्य भार्या, वसुदेव की जिसके भरण पोषण करने वाले वसुदेव थे उनकी भार्या है, ते नंद गोकुले, उन नंद गोकुल में निवास कर रही है। नंद बाबा और वसुदेव जी भाई थे दोनों। देव मीढ़ के 3 पत्नियां थी, सॉरी एक थी छत्रा, सॉरी दो, एक छत्राणी थी और एक शूद्रा थी और एक वैश्य थी। जो छत्राणी पत्नी थी उससे उत्पन्न हुए महाराज सूरसेन, जो वैश्य पत्नी थी उससे उत्पन्न हुए प्रजन्य बाबा, जिनके 5 पुत्र हुए, नंद उपनंद अभिनंद नंद नंदन और नंद, ये 5 पुत्र उत्पन्न हुए। और जो शूद्रा पत्नी थी उससे उत्पन्न हुए उग्रसेन, देवक इत्यादि, उग्र से उग्रसेन हुए। अब ऐसा भाई थे वसुदेव जी, कंस और नंद बाबा, ये सब भाई थे। दादा एक ही थे, दादा एक थे, 3 अलग अलग बाप थे, तो नाता जोड़ने में सब भाई थे। तो नंद बाबा वैश्य देव प्रजन बाबा के पुत्र थे, तो वैश्य थे, और महाराज सूरसेन के पुत्र वसुदेव क्षत्रिय कुमार थे। इन लोगों में प्रगाढ़ दोस्ती थी, बहुत दोस्ती थी, इतनी दोस्ती कहने का। और पहले अपना सभ्यता संस्कृति भी था कि अपने स्त्री को दूसरे के घर में भेज सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। आजकल भेज सकते हैं, गड़बड़ हो जाएगा, पता नहीं बाद पत्नी के रूप में आएगी कि दूसरे के रूप में आएगी, जमाना खराब हो गया है। पहले अपने बेटी बहुओं को दूसरे घर में भेज सकते थे। एक गांव की बेटी जो थी वो पूरे गांव की बहन थी, कहीं बम्बे में मिल गई, अरे भैया कहां से, गांव का मिल गया तो भैया हो गया, उसका रक्षा करेगा। लेकिन आजकल जमाना खराब हो गया है, तो ये द्वापर का बात था। तो ये कहते हैं, रोहिणी वसुदेवस्य भार्या ते नंद गोकुले अन्यास्य कंसम विघ्नः विवरेतु वसंतिहि, और अन्य स्त्रियां जो थी कंस के दुख से अन्य जगहों पर निवास करती थी। तो कहा कि हमें क्या काम करना है, परिचय तो हो गया, आप करना क्या है। जे वक्या जठरे गर्भ से साख्यम धाम माम काम, हे देवी तुम जाओ और देवकी के जठर में, गर्भ में नहीं जठर में, सफाई करना तो दूर रहना पड़ेगा ना, उसी में कैसे सफाई होगा। तो जठर, हमारे पेट में जठर है, जठराग्नि है ना, जहां पर वो अग्नि निवास करती है, और बलराम जी भी अग्नि स्वरूप हैं। यदि गर्भ में गए होते तो गड़बड़ हो जाता, गर्भ को जला सकते थे बलराम जी, इतने पावरफुल थे। गर्भ को सफाई करना था, इसलिए देवकी के जठर में गए। देवख्या जठरे गर्भम शेषाख्यम धाम माम काम तत्सन्निकृष्ट रोहिण्य उदरे सन्निवेशया। क्या करना है तुम्हें, 2 काम करना है। तुम जाओगी मथुरा, पहला काम करोगी। जब गोकुल में है तो जोग माया है, और मथुरा आते ही वो क्या हो जाएगी, माया, महामाया। तो महामाया काम क्या है, लोगों को फंसा कर रखना। तो आकर के सबको सुला देगी, पहला काम, इन्हें थेसिया दे देगी, देवकी को भी, और वहां से देवकी के गर्भ में जो बालक है उसको निकालना है। सन्निकृष्ट, ऐसे निकालो, ऐसे ऑपरेशन करो कि देवकी को पता भी ना चले, तो देवकी सो जाएगी, एक काम। और उसको ला करके रोहिणी के घर में ऐसे स्थापित कर दो कि रोहिणी को पता भी नहीं चले। बलराम जी इटर्नली रोहिणी तनय हैं, रोहिणी के ही पुत्र हैं, एक स्पेसिफिक काम के लिए यहां पर आए थे। और प्रश्न उठता है कि मानो माया देवी पूछ सकती है कि यदि बच्चा बाहर निकलेगा तो मर जाएगा, बच्चा बाहर निकलेगा। बलराम जी उस समय 5 से 6 महीना के थे, मतलब फॉर्म हो गया था, बच्चों का जो फॉर्म होता है 5-6 महीने होता है, 5-6 महीना के बलराम जी थे। और इधर रोहिणी के गर्भ में भी वायु देवता प्रवेश कर गए थे, तो वो भी गर्भवती थी। तो बलराम जी को निकालेंगे तो मर जाएंगे, मान जोग माया कहे नहीं, कहते धाम माम का, तो मेरे धाम है, ऑर्डिनरी नहीं है, ऐसे मेरे लिए कोई मृत्यु नहीं है, वैसे उनके लिए मृत्यु नहीं है। तो मानो कोई प्रश्न कर सकता है कि क्या जरूरत था बलराम जी को वहां से निकालने के लिए, क्या तकलीफ था। शुद्ध गोस्वामी आदि नवीसरण के ऋषियों ने, सौनकादि ऋषियों ने पूछा शुद्ध गोस्वामी से, देवक्या वासुदेवस्य जातो यस्य चिकित्सय, आप ये बतलाइए कि क्या कारण पड़ा देवक्या वासुदेवस्य जातो यस्य चिकित्सय, भगवान देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में क्यों आए है? नहीं सॉरी सॉरी, यहां पर प्रश्न किए हैं, 6 प्रश्न किए हैं पहले अध्याय में परीक्षित महाराज, उसमें से एक प्रश्न है, रोहिण्या तनय प्रोक्त राम संकर्षणय तथा देवक्या गर्भ संबंध कुतो देहांतर बिना, अरे बिना देह बदले हुए दो मां के एक व्यक्ति बेटा कैसे हो सकता है, बिना देह बदले, बिना मरे, मरो जन्म लो, देह बदलो तो मानो जोग माया करे देह बदलना पड़ेगा। भगवान कहते हैं माम धाम का, मेरे धाम है, उनके लिए देह बदलने की जरूरत नहीं है, पहला बात। दूसरा बात, क्या तकलीफ था यदि देवकी के गर्भ में भगवान रह जाते तो स्वाभाविक है 9 महीने के बाद बाहर आते। और कंस का क्या आदत था, जो ही बजा जन्म में तो क्या करता था, कंस मारने काम था उसका, अब तो 7वां गर्भ था, अब वेटिंग नहीं कर रहा था मारने का, क्या बलराम को मार सकता था, अरे बलराम को पकड़ता तो जल करके भस्म हो जाता कंस, तो फिर भगवान आते ही नहीं, तो भगवान की जल्दीबाजी थी, लेकिन गक्षम देवी जल्दी जाओ देर मत करो, नहीं कहीं बलराम जी निकल जाएंगे गड़बड़ हो जाएगा। और मान लो कि कंस मार भी दिया बलराम जी को, तो पृथ्वी किस पर निवास करेगी, शेष नाग पर धारण किए हैं, वो यदि मर जाएंगे तो पृथ्वी धरातल में चली जाएगी, तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, इमरजेंसी केस था, इसलिए भगवान कहते गक्षम देवी जल्दी जाओ फटाफट देर मत करो जाओ सब कुछ होगा। उसके बाद एक श्लोक और कहूंगा और उसके बाद में शाम दोपहर में ये अंतिम श्लोक यहां के लिए, क्योंकि अब भगवान आदेश दे दिए, अपना काम कर लिए, उसके बाद प्राइस दिए हैं उसको, और बाद में जोग माया भगवान के तथास्तु कह करके भगवान का परिक्रमा की है और चल दी है। और इधर कंस के कारागार में अब भगवान आ गए हैं देवकी के गर्भ में, आविर्भाव का बात मैं कह रहा था कि भगवान कैसे आए, भगवान अपि विश्वात्मा भक्तानाम अभयंकरम आविशेषान अंशभागेन मन अनकदुंदभी, तो वे भगवान विश्वात्मा जो भक्तों को अभयंकरम अभय करने वाले, भय से मुक्त करने वाले, आविशेष अंश भागेन यानी संकर्षण वासुदेव प्रदुम्न और अनिरुद्ध, सब रूप से भगवान अंश भागेन सबके साथ में, या दूसरा और जितने अवतार हैं राम नरसिंह बरा जितने अवतार हैं उन सब के साथ में भगवान आए, कहां आए, मनो अनकदुंदभी, अनकदुंदभी जब वसुदेव जी का जन्म हुआ तो दुमदुमिया बजी थी, नगाड़े बजे थे, यानी भगवान के पुत्र होंगे, इस बात को सत्य करने के लिए अनकदुंदभी के मन में भगवान पधारे। ठीक वैस और वे अनकदुंदभी अपने मन से देवकी जी के मन में भगवान को प्रवेश कराया, बतला करके
नंद बाबा भी यशोदा मैया के मन में ऐसे ही प्रवेश कराए। गोपाल चंपू में श्रीपाद जी को स्वामी वर्णन किए हैं कि जो स्वप्न हुआ वो एक साथ में स्वप्न हुआ था, नंद बाबा के मन में भी और वैसे ही मन में और तीर्थ भगवान यशोदा के, और दोनों एक शेयर किए थे। यहां पर भी मन में आए भगवान और भगवान का आविर्भाव हुआ मन में अनकदुंद भी, और मेंटल ट्रांसफर किए कहां पर, देवकी के गर्भ में। ठीक वैसे ही दिखाई नहीं पड़ा। यहां पर कोई बच्चा होता है मां के रज और पिता के वीर्य से, लेकिन यहां मन से हुआ। ठीक वैसे ही लोहा के अंदर अग्नि का प्रवेश, लोहा को आग में रखोगे तो दिखाई पड़ेगा आग का प्रवेश किया है। कुछ समय के बाद लोहा लोहा नहीं रह जाएगा, आग का रूप धारण कर लेगा। ठीक वैसे ही देवकी रूपी लोहा में वसुदेव रूपी आग प्रवेश किया, और उसमें कौन था, भगवान। जैसे आग में दाह्य शक्ति होती है, वैसे ही वसुदेव जी के मन में भगवान थे। तो जिस प्रकार से लोहा में अग्नि प्रवेश करता है, वैसे ही भगवान का आविर्भाव हुआ देवकी के गर्भ में वसुदेव जी के मन के द्वारा। मना अनकदुंद भी। अब मैं थोड़ा ऊपर जा रहा हूं, अभी ये तो आविर्भाव का बात बता दिया, क्योंकि आज का यही टॉपिक था जो मैं कहा कि अंतिम श्लोक कहते हैं, अथ अहम अंश भागेन देवक्या पुत्रता शुभे। हे शुभे, हे कल्याणी, तुम मेरा काम करने जा रही हो, यानी उसको निश्चयता दे रहे हैं जोग माया को भगवान, प्यार से वसलता पूर्वक समझा रहे हैं, चिंता मत करो, ऐसा तुम मत सोचो कि मैं नहीं आऊंगा, मैं तुमको भेज करके काम करा लूंगा, नहीं मैं भी आऊंगा। इसी शब्द अथ, अथ मतलब ठीक वैसे ही जैसे तुम आओगी यशोदा के यहां और मैं आऊंगा देवकी के यहां, तुम यशोदा के यहां से यानी तुम गोकुल आएगी, मैं मथुरा आऊंगा, तू गोकुल से ट्रांसफर होगी मथुरा और मैं मथुरा से ट्रांसफर होऊंगा गोकुल। ये हुआ यथा, अथ ठीक वैसे ही, अथ अंश भागे न, मैं अकेला नहीं आऊंगा, शंख चक्र गदा पद्म वासुदेव संकर्षण अनिरुद्ध और प्रद्युम्न के साथ में आऊंगा। देवक्या पुत्रताम शुभे, देवक्या देवकी के, देवक्या मतलब देवकी के पुत्र पंता को, भगवान किसी के बेटा नहीं हो सकते हैं, भगवान किसी, भगवान भगवान है, भगवान किसी के बेटा नहीं, पुत्रताम पुत्रापन को कि देवकी समझे कि मेरे बेटे हैं, समझे भगवान है नहीं बेटा, भगवान भगवान है। और प्रश्न उठता है कि भगवान अपने अंशों के साथ आए, साक्षात क्यों नहीं आए, क्योंकि देवकी वसुदेव ऐश्वर्य भाव में थे, तो ऐश्वर्य भाव में ब्रजनंदन श्याम सुंदर नहीं आते। ब्रजनंदन श्याम सुंदर तो गोकुल आए जहां पर नंद और यशोदा थी जो कि माधुर्य भाव में थी, तो वहां पर साक्षात ब्रजनंदन श्याम सुंदर गोलोकपति आए, लेकिन यहां पर कौन आया, अंश भागे न, भगवान नहीं आए, भगवान के अंश शंख चक्र गदा पद्म या वासुदेव संकर्षण अनिरुद्ध और प्रद्युम्न ये आए, उसमें से प्रद्युम्न पुत्र के रूप में हुए और वसुदेव कंस को मारे हैं वासुदेव। तो ऐसे ऐसे उसका वर्णन होगा तो ज्यादा समय लग जाएगा। प्राप्सी तुम यशोदायाम नंद पत्न्या भविष्यति, तुम उधर नंद की पत्नी बनोगे, पुत्री बनोगी, यशोदायाम नंद पत्नया। देखिए जहां पर भी यशोदा और नंद पत्नया या नंद पत्नी आया है तो समझना चाहिए। नंद पत्निया का मतलब नंद बाबा की पत्नी, यशोदा तो हो ही गया, फिर यशोदा नाम देने का था जरूरत क्या था? यशोदा जी वृद्धावस्था को प्राप्त कर गई थी, वृद्धावस्था में संतान नहीं था, तो यशोदा को जस देने के लिए भगवान आए हैं। इसलिए ऐसे ही दसवां स्कंध में अन्य है, एकदा गृहदासेषु यशोदा नंद गेहिनी, वहां भी यशोदा नंद गेहिनी, यहां भी आया है यशोदया नंद पत्नया, यशोदा जो नंद की पत्नी है, यानी नंद बाबा और यशोदा के जस देने के लिए तुम वहां जाओगी। तो अथ मतलब तुम उधर जन्म लोगी और मैं देवकी के यहां, तुम जन्म लोगी यशोदा के यहां और मैं जन्म लूंगा देवकी के यहां, लेकिन होगा क्या, किस क्रॉस ट्रांसफर होगा। और कितना सुंदर बात है कि भगवान जोग माया को मथुरा नहीं भेजे, वृंदावन भेजे। ये बड़ा समझने योग्य बात है कि वृंदावन भेजे, कि जोग माया मथुरा जाएगी तो सबको अपने चंगुल में फंसा लेगी, है गड़बड़ हो जाए, काम नहीं हो पाएगा, लेकिन वृंदावन जाएगी तो भक्तों का संगति होगा। तो वृंदावन जाने का मतलब मार्केटिंग करना, शॉपिंग करना, ये सब काम नहीं है। वृंदावन जाने का मतलब भक्तों का संगति करना, और भक्तों का संगति करेंगे तब हम लोगों का कल्याण होगा। और तब जब कल्याण हो जाएगा भक्तों की संगति, चाहे मथुरा जाओ, चाहे बॉम्बे जाओ, चाहे अमेरिका जाओ, कहीं जाओ, माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा, माया अपना काम नहीं करेगी। तो वृंदावन जाने का मतलब कि भगवान के लीला कथाओं का भक्तों के मुखारबिंद से श्रवण करना। हमारे भक्त लोग वृंदावन जाते हैं, सुनते कम हैं, आई एक्सरसाइज ज्यादा करते हैं, देखने जाते हैं, यह देखेंगे वह देखेंगे, क्या महिमा समझ पाएंगे। सुनना चाहिए भक्तों के मुखारबिंद से, और सुन करके हम समझ सकते हैं, और तब वृंदावन मूड को लेकर के हम कहीं जा करके प्रचार कर सकते हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद जी के थे। तो भगवान का आविर्भाव हो गया है, लेकिन जोग माया का पुरस्कार अभी बाकी रह गया है। तो आज दोपहर में देवस्तुति होने वाली है, भगवान का स्तुति देवता लोग करेंगे। भगवान 16 कलाओं से परिपूर्ण हैं, इसलिए देवता लोग 16 श्लोकों में भगवान का प्रार्थना किए हैं, देवस्तुति किए हैं। तो उसका वर्णन हम दोपहर में करेंगे, अभी कथा का विराम यहीं करेंगे, 9:30 बजने को है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है? नहीं तो बंद करेंगे। हनुमान जी प्रश्न होना चाहिए, नो कमेंट। हनुमान जी को पहले माइक दबाइए, बोलो जोर से, बहुत खाते हो, जोर से बोलो एक बार माइक।
हरे कृष्णा। प्रभु जी आप बताए वसुदेव जी देवकी का जो पहला पुत्र था उनको कंस के पास लेकर गए 5 वर्ष के बाद, जब 5 साल का हुआ, तब उस समय क्या सिक्योरिटी गार्ड सो रहे थे क्या? क्योंकि वो नजर कैद में थे, और जैसे ही उनको पता चला तो उनका ड्यूटी था कंस को बताने का।
कंस को मालूम था, कंस को मालूम था हाँ। कि बच्चा पैदा हुए हैं हाँ। कंस को से हाउस अरेस्ट थे ना हाँ। और कंस को पहले बच्चा से थोड़ा डर था, उसको तो 8वां बच्चा से डर था। आकाशवाणी हुआ था अष्टम गर्भम, 8वां संतान तुम्हारा काल होगा, पहला नहीं। वो तो नारद जी बीच में आकर गड़बड़ कर दिए, और उसके बाद जे बजे जन्म हुआ ब्रम। तो 5 बच्चे तक सेफ थे, कंस को कोई तकलीफ नहीं था। यदि नारद जी न आते लोग बड़े हो तभी तकलीफ नहीं था, शादी विवाह होता नाती पोते थे वसुदेव जी तभी तकलीफ नहीं था कंस को, वो तकलीफ था 8वां बच्चा से। क्लियर?
या ओके।
हाँ, और कोई प्रश्न? ये बकवास है, लोग कहते हैं कि जैसे बच्चा पैदा हुआ कंठ मार डाला, उस मूवी में दिखाते हैं, शास्त्र इसका सम्मति नहीं करता है। हाँ बोलो बोलो जल्दी जल्दी, माइक दो हनुमान जी, पकड़ कर बैठ जाते हो। इस संसार का यही गति है, पकड़ कर बैठ। छोड़ने से मुक्ति होती है, त्यक्त्वा शांति अधिगच्छति।
हरे कृष्ण प्रभु जी, थोड़ा तो ये भी था, ये तो क्लियर हो गया, लेकिन दूसरा ये सवाल है कि ब्रह्मा जी के जो छह पुत्र थे, ब्रह्मा जी के छह पुत्र थे, उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा था।
ब्रह्मा जी के नहीं छह पुत्र थे, आप कहाँ थे उस समय? मरीचि के प्रजापति मरीचि के छह पुत्र थे, ब्रह्मा जी के नाती थे, ब्रह्मा जी दादा लगते थे
जी।
थे मत करो,
ब्रह्मा जी को उन्होंने पीछे, फिर बाद में हिरण्यकश्यप को उधर भी वो पूछे, आप इतने बड़े कैसे हो गए, फिर उधर उधर दोनों जगह कैसे क्या हो, ये समझ में आया?
मुझे आपका प्रश्न समझ में नहीं था, क्या उत्तर दूंगा मैं?
प्रश्न ये था, ब्रह्मा जी के नाती थे, ब्रह्मा जी को पूछा आप इतने बड़े बड़े कैसे हो गए, तो तपस्या करके हो गए, तो इन्होंने चोरी से तपस्या किया, तो ब्रह्मा जी ने उनको शाप दिया तुम असुर बन जाओ है? तो फिर बाद में वही छह पुत्र अपना इसके
काल नहीं गए,
हिरण्यकश्यप के यहाँ, वो कैसे गए?
अरे असुर बन गए तो असुर किसके यहाँ जन्म लेंगे, असुर घर में जन्म लेंगे ना, तो हिरण्यकश्यप असुर था, उसका बेटा काल नहीं, वो भी असुर था,
लेकिन प्रहलाद तो असुर नहीं थे, फिर वो प्रहलाद वहां पर कैसे गए?
तो असुर के घर में जन्म लेकर ही भगत कोई बन सकता है, जैसे अंधकार में प्रकाश को ला सकते हो लेकिन प्रकाश में अंधकार नहीं ले जा सकते हो, तो असुर के घर में जन्म लेकर के भगत बन सकते हो, हम लोग तो असुरे थे ना, आप क्या साधु जन्म लिए थे क्या? प्रहलाद जी जन्म से ही परीक्षित महाराज लोगों को पुण्य पहले सुन लिए थे, नारद जी से सुन लिए थे, उनका संस्कार अलग से था, उनका दीक्षा गर्भ में ही हो गया था। ऑल राइट, ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जाय, श्रील प्रभुपाद की जाय।